के बारे में उन लोगों के पिता जैसे कि हृदय में अद्भुत हुआ ऐसे प्रकार का है कि मैंने भी इच्छा किया।
उसमें विशेष बात आया कि महोत्सव आप सुंदर सुंदर प्रसाद बने, परिवेशन करने वाला ढंग का नहीं हो तो किसी को पेट भरेगा नहीं, अतृप्त रह जाएंगे, चाहे कितना भी अमृत वर्ष बनाए। इस प्रकार ये महोत्सव तिथि में परिवेशनकारी उपयुक्त चाहिए, धैर्य वाला चाहिए और उदार चिता होना चाहिए और उपयुक्त व्यक्ति समझकर उपयुक्त परिवेशन होना चाहिए। यह हम लोगों ने थोड़ा सुनार आभास मिला था। इस प्रकार आज इस तिथि को उपलक्ष्य करके गुरुवर्ग क्या कहते हैं, आविर्भाव तिथि या तिरुभाव तिथि में समस्त जनता समूह को जो बद्ध जीव समूह सबको बुलाते हैं, क्या है भाई आज महोत्सव है। क्या महोत्सव है? ऐसा महोत्सव है कि उत्सव के अंश ग्रहण करने से कभी भी जीवन में तुम्हारा भोग प्यास और तुम्हारे अनर्थ पाप ताप तुम्हें नहीं सताएगा। सदा के लिए इस उत्सव के अंशग्रहण करने से सदा के लिए तुम रिक्त वैकुंठवासी हो जाओगे। क्यों? वैकुंठ जगत के जो नित्य ब्रजधाम के जो परिकर है या वो उन लोग के उत्सव हो रहा है तो उत्सव में योगदान करने से कहां हम युक्त हो गए, कहां के प्रसाद पा रहे हैं, नित्य वृंदावन के, उनके साथ हमारा युक्त हो जाने से और उनके प्रसाद पाने से कृपा प्रसाद मतलब कृपा है, हम नित्य युक्त होंगे। अब बतलाया परिवेशनकारी बहुत सुंदर होना चाहिए नहीं तो प्रसाद को देने से। अर्थात गुरुवर्ग क्या करते हैं, सबको निमंत्रण दिया, इतने सुंदर सरल सुमिष्ट कर्ण मन रसायन वाणी उनके चरित्रावली परिवेशन करते हैं। परिवेशन के द्वारा क्या करते हैं, हृदय में एक श्रद्धा का बीज बो देते हैं। व्यक्ति कैसे थे, क्या करने आए, इस जगत में कब तक रहे, किस प्रकार से जीवों को मदद किया और किस प्रकार से जीवों के अनर्थ के से उबार करके सदा के लिए नित्य समन्वित कर दिया। जब हम उनके गुणावली श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, इतना सुंदर परिवेशन किया सुमिष्ट सरस वाणी के द्वारा सबके हृदय में जाकर पवित्र कर दिया, स्थान बना दिया, अब उनके चरणांग में शरणागत हो गया, प्रणत हो गया विश्वास के द्वारा। हाय हाय, हम इतने दिन में नहीं समझ पाया, दुर्भाग्य करना। और ये जो परिवेशन करता ऐसा हमारे भाग्य होने से हम लोग ऐसे व्यक्तियों के सान्निध्य प्राप्त करेंगे। बोलते बिना हरि कृपा मिले न संता, ये जो आविर्भाव की जो किसी में ये जो निमंत्रण आदि होता है बुलाया जाता है केवल मात्र ये राबड़ी माला खीर पूरी और विभिन्न प्रकार से बच्चे से लज्ज पेय के लिए नहीं, साथ साथ में शरीर की खुराक नहीं, मन की खुराक नहीं, आत्मा का खुराक। जो आत्मा के अंदर विश्वास नाम की एक वस्तु नहीं है हमारे पास, श्रद्धा नाम की कोई भी शब्द हमारे पास नहीं है। हमने मैंने उदाहरण दिया जीव गोस्वामी प्रभु के कुछ बातों को लेकर, उन्होंने कहा देखो वैष्णव दर्शन धाम दर्शन और क्या विग्रह दर्शन भागवत दर्शन ग्रंथ दर्शन और छह प्रकार दर्शन की बात दिया, वैष्णव गुरु साधु भागवत धाम और विग्रह, ये दर्शन कौन करेगा। ये जो रिश्वत है मैं विग्रह दर्शन करूंगा या मैं महाप्रसाद दर्शन करूंगा धाम दर्शन करूंगा, जो जीव हत है आहत आहत है हत हो जाएगा, कभी संभव नहीं। उदाहरण दिया ये डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाकर यदि कहे डॉक्टर डॉक्टर को मैं देखूंगा कैसा डॉक्टर है, डॉक्टर को देखने जाना है कि डॉक्टर को दिखाने जाना है? डॉक्टर ने तुमको देख लिया तो तुम्हारे बीमारी निकाल करके तुम्हें सदा के लिए स्वस्थ बना देंगे। इसलिए धाम के पास, वैष्णव के पास, गुरु के पास, हरि के पास, साधु के पास उनको देखने नहीं जाने का, विग्रह देखने नहीं जाने का, धाम देखने नहीं जाने का। धाम में किसे जाना है? यदि बार बार जाने पर भी उनका नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारे अनर्थों को और जो भोग पशु जीव संध्या आत्मा सब समय के लिए अनर्थ के द्वारा घिरे हुए हैं, हमें यदि देख करके थोड़ा प्यार प्रीति के साथ हमारा हम दुष्ट आत्मा है, दुरात्मा है, डकैत है, गुंडा है, बदमाश है, सब तरह से लुच्चा लावारा आवारा है, किंतु कौन दया करेगा? कहते हैं निर्गृण जाने कृपा कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत जगत माधारे पुरुषे किशोरी मुहिषे लघिष्ट और पुरुषे किशोरी मुहिषे लघिष्ट আমার নিগৃহ মরে কেবা কেবা করে এক নিত্যানন্দ বিনা জগতে মাধারে মোর নাম জেলে তার পাপ হয়, মোর নাম জেলে তার পুণ্যক্ষয়। ইস প্রকার যদি কই জীব ধামে যায়, গুরুকে নিকট যায় আর সাধুকে নিকট যায়, ছাত্র নিকট যায়, তা ওলোক যদি কৃপাপূর্বক দর্শন করলে, আমলোক জানতে নেই শাস্ত্র খোল করকে রাখ দিয়া पढ़ेंगे कुछ नहीं अनुभव होगा, समझ में नहीं आएगा। एक अक्षर का भी आत्म प्रकाश नहीं करेगा हमारे निकट। जिस समय हस्त स्नान के समान वृता हो जाएगा, जिस समय हम शरणागत होकर के वो ग्रंथकार के निकट संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करेंगे, तो ग्रंथकार अपने वाणियों को हमारे हृदय में अपने स्वरूप का प्रकाश कर दर्शन कराएंगे। यदि जीव अपने शक्ति के द्वारा दर्शन करने जाता है, धोखा खाता है, वह ठगता है, वंचित रह जाता है। इसलिए सबसे पहले ये महोत्सव में योगदान करना है। क्या महोत्सव? ये हरि कथारती अमृतमय उनके चरित्रावली गुणावली उनके वैशिष्ट्य और उनके जो विचार आचरण जीवों के लिए जो दया अमंद दया ये सब हम लोग यदि श्रवण कीर्तन करें और परिवेशक ऐसे परिवेशन किया सबके हृदय के अंदर में उनके बारे में जगह कर दी, श्रद्धा उत्पन्न कर दी। ये जो श्रद्धा रूपी अमृतमय वाणी हमारे अंदर में प्रवेश करा दिया, ये है महोत्सव। उत्सव नहीं, महाउत्सव है। महान रूपे न बिराजते आराधते शोभते तो महंत होते उनका नाम। आज वो महंत और आचार्य शिक्षा गुरु वैष्णव या कोई हमारे भजन पत्रदर्श गुरु कोई भी हमें ऐसा मिले जो हमें इस अंधकार राशि में भी है आनंद के लहर और अमृत रूपी बाढ़ हमारे हृदय में प्रवेश करा दे, चेतनता प्राप्त हो जाए, समझे हम सदा के लिए उत्सव में योगदान कर दें, करा दें। हम तो कर नहीं सकते, बुला के लाया, बड़े प्रेम से, बड़े प्रीति से हमारा दुष्टता हमारा शिष्टता दिखाने, बड़े स्नेह से हृदय को साफ करके वो उत्सव के अमृत रूपी प्रसाद हमें दे दिया। इस प्रसाद को पा करके जन्म जन्मांतर हम उनके साथ संबंधित हुए, श्रद्धा उत्पन्न हुआ, ये मतलब संबंध हो गया। इसका नाम है संबंध ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व विज्ञान। दिव्य साईं प्रभु परम दयालु उनके समस्त विचारों में इस प्रकार बड़े सूक्ष्म रूप में आत्मदर्शन की बात, परमात्मा दर्शन की बात, भगवत दर्शन की बात, प्रीति दर्शन की बात, हमारे पास सबसे अनमोल वस्तु है प्रीति। ये प्रीति के हिस्सेदार बहुत है, इतने हिस्सेदार है, सभी चाहता है प्रीति। कौन नहीं चाहता है प्रीति को? कौन प्यार को चाहता नहीं? ऐसा कोई जगत में है? बड़े बड़े शेर से शेर, बदमाश से बदमाश, गुंडे से गुंडे, डाका से सबसे कैसे व्यक्ति हो वो भी प्यार को चाहता है। किंतु हम यदि इस स्थिति के एक भी अंश, एक भी बूंद है यदि हमने किसी के लिए दे दिया तो हम उनके साथ संबंध युक्त हो जाते हैं, हमारा जीवन स्रोत उधर चले जाता है। जीव गोस्वामी तो प्रीति संदर्भ में कहते हैं, देखो संदर्भ बनाओ, वक्त बनाओ, पेटी बनाओ, बिना दीवार का चार दीवारी क्या ऊपर नीचे ढक्कन का पेंदा था बक्स बना, अर्थात एक ही बूंद पृथ्वी के रस किसी के पास निकल करके नहीं जाना चाहिए। समस्त उठा करके क्रोड़ीभूत करके जिस दिन तुम अपने गुरुपाद पद्म के हाथ में चरणों में समर्पण कर सकोगे प्रीति करना है उनसे, सब उस समय वो उठा करके लेकर के तुम्हारे प्रीति को राधा रानी के चरणों में समर्पण कर देंगे, तब तुमको राधा मदर के साथ बांध देंगे सदा के लिए, कभी तुम आप अलग नहीं हो सकते। आज यदि हम अपने प्रीति को लेकर के बिना रस्सी के हम बदल जाते हैं, बिना नकल के बिना खूटा के हम चार दीवारी के घूमते रहते हैं बिना नकल का, चले जाते अमेरिका अरब सऊदी अरब दुनिया भर के देशों में, क्या कहाँ हमारा मन है जहाँ पर गृह नेम गृह मुच्छते, एक खूटा गड़ा हुआ है बिना नकेल का, हम चारों तरफ उसकी घूमते हैं और आकर के वहीं जाते हैं जहाँ दो हाथ की चारपाई बिछी हुई है जमीन है, तो कहते हैं इसलिए गृह मेध, एक गृह मेधी और एक गृहस्थ, इससे गृह में जीवन सदा के लिए ऐसे भ्रमण करेगा बिना नकेल का और वहीं कुत्ते में आसक्ति गड़ा हुआ है। ऐसे ही कब आसक्ति भगवान के साथ होगा, तुम्हारा चित्त राधा रानी के जैसे दामोदर के साथ बंधन हुआ है ऐसे हमारे चित्तर भी भ्रमण कब बन जाएगा राधा मदर के ग्रंथ का तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये जो छह तत्व है जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो कितना भी माला करे भजन करे भजन कुछ भी नहीं है, क्यों जानता तो कुछ है नहीं, तब तक जानता नहीं किससे प्रीति करे कौन हमारा है, बोले गाय के बच्चा तो जानता नहीं है किससे प्रीति करना है, वो अपने माँ के साथ दूध पीता है प्रीति करता है, बोले जब तक ये घास खाना सीखा नहीं है तब तक माँ को पलट देता है, खाने लग गया ना अब माँ की परवाह नहीं करता। इस प्रकार जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा और विचारों में प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक आपको कोमल श्रद्धालु व्यक्तियों को एक मिनट में लुढ़का करके डुबो देगा। इससे ग्रंथकार हमारे परमाराध्य संत गुरु प्रभुपाद गुरुवर्ग क्या कहते हैं देखो है, हरिनाम अमृत व्याकरणम, एक व्याकरण अध्ययन करना है क्या, नहीं तो तुम्हारा जीवन अकारण हो जाएगा, क्या हरिनाम अमृत, हरिनाम करना है, कैसे हरिनाम करेंगे यदि सीखना है तो व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा, क्या अरे व्याकरण में क्या है सूत्र विस्तृति क्या है संधि है ये सब चीज है, इसमें हमारा क्या रखा हुआ है कौन सा तत्व इसमें है, नहीं जब तुम नामामृत नामावली समूह अध्ययन नहीं करोगे और उसके अंदर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक संपूर्ण व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात भाषा अलंकार छंद सूत्र संधि वृत्ति सब जानना पड़ेगा, किस प्रकार बातें करना चाहिए किससे, किस प्रकार गुरुवर्ग के साथ बात करना है, किस प्रकार प्रतिभाषियों के साथ बात करना है, किस प्रकार साधारण व्यक्ति के साथ बात करना है, अपने जीवन में आचरण करके दिखाया, हम लोगों ने आलोचना की थी क्या जी बोलता है प्रभु बचपन में बालक जब जन्म ग्रहण की रूप जो संसाधन को समय लेकर महाप्रभु के चरणों में सबसे पहले उनको महाप्रभु सन्यासी कर जा रहे थे वृंदावन रामकली में रुक गए उनके चरणों में उनको समर्पण किया, उस दिन से महाप्रभु के हो गए समस्त महाप्रभु के विचार वृत्ति महाप्रभु के उनके हृदय में आया। हम लोगों ने सुना थोड़ा बड़े हुए जैसे बड़े हुए ना घर में तो मन लगे नहीं, थोड़ा बड़े होने के बाद में वो अपने आप क्या किया माँ को घर वाले को बोले हम अब विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, कहाँ नवद्वीप धाम में हम कुछ विद्या अध्ययन करके तब हम आएंगे, क्योंकि नवद्वीप में कितना विद्यालय टोल संस्कृत जब जाने लगे सोचने लगे अब मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा, ये गृहस्थ रूप संसार में रहने पर कभी भी हमारे लिए छुटकारा नहीं मिल सकता, मोह में मैं निकल में मोह रूपी निकल में फंस जाऊंगा, वंश में तो अब कोई है नहीं বিটাকা দেহান্ত গয়া অনুপম বল্লভ জি শিবল্লভ তাহলে তাও বৃন্দাবন নেই গরমে এক বালক কে বলি বালক নে ক্যা আর মুখে চলনা হ্যাঁ পড়নে কে লি মা ক্যা করে আদেশ দে যাও আরে যা মহাপ্রভু কো স্মরণ করকে তো আগে বড়ি মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেব কা আদেশ দে দিয়া শ্রীজি বা রে উনকে পর কৃপা করনা তুম ভালে ই কিছু কো দর্শন না দো জীব কে উপর কৃপা করনা জীব কর সামনে চল চল যা মহাপ্রভু কে দিয়া প্রাঙ্গণ কে দরবাজে মে আয়ে উস সময় সতী মাতা বৃদ্ধাবস্থা মে বেঠি হ্যায় আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঘর সে কবি নেই নিকলতি কেউ রাত কে চার বাজে যাকে স্নান করকে গঙ্গা আসতি কবি কিছু উনকা মুখ দে নেই দেখা চরণ কো নেই দেখা দিন রাত হরিনাম করতি থোড়া কুছ বানাতি তো ভোগ লাগা করকে সতী মা কো দে দিতি সতী মা প্রসাদ পাকে উচ্ছিষ্ট ছোড় দেতি উসি সেই উনকা গুজারা হয়ে যাত আর জীব গোস্বামী গানে পর শ্রীজি বালক বড় সুন্দর ইতনা সুন্দর রাজকুমার হ্যাঁ সুন্দর উসকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অন্দর বুলা করকে আপনি চরণ কো উনকে সর পর রখ করকে উনকো প্রচুর আশীর্বাদ কৃপা নিত্যানন্দ প্রভু নে ক্যা কিয়া জীব কো দেখ করকে উনকো লে করকে সমস্ত মহাপ্রভু কে লীলাস্থলী কা দর্শন করায়া হম লোগো নে শুনা হামারে বিশেষ করকে জো নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা হ্যাঁ উসমে জীব গোস্বামী কে কিস প্রকার সে নিত্যানন্দ প্রভু নে নবদ্বীপ কা দর্শন করায়া নবদ্বীপ ধাম কা বর্ণন করা মহাপ্রভু কে লীলাস্থলী ক্যা ক্যা লীলা অভ্যন্তরীণ সমস্ত লীলাও কি রহস্য নিত্যানন্দ প্রভু নে খুদ দর্শন করা করকে বর্ণন কিয়া আর ধাম শুলক উস পরিক্রমা কা সমস্ত বিবরণ বতলায়া ইসকে বাদ নিত্যানন্দ প্রভু আদেশ দিয়া যাও তোমারে পূর্বজ কো সদাও কো সবকো বৃন্দাবন স্থান দিয়া তুম বৃন্দাবন যাও আর জানা নেই চাহতে বলে নেই আপকো ছোড় করকে মে জানি সকতা ধাম কো ছোড় করকে কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু জানতে মুঝে অভি চলে জানা হ্যাঁ সেই বালক কো যদি মে অভি পাশ মে রাখা বালক মেরা জানে কে বাদ ও নেই বচ সকতা ক্যোঁকি প্রীতি কে আকর্ষণ কহাঁ হ্যায় নিত্যানন্দ প্রভু কে চরণ শুদ্ধ সত্তা কা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হ্যায় वो जहाँ सत्ता यदि जुड़ जाए सत्ता को अलग नहीं कर सकता कभी जब तक हम लोग गुरु से मिले नहीं तब तक हम लोगों के लिए हम लोग अलग अलग अपना स्वतंत्र बुद्धि है क्योंकि एक बार यदि हम लोग गुरु के साथ संबंधित तो हो जाए विश्वास हो जाए तो हमारा गुरु भारी वस्तु है समझते हम तो लघु है ना उनका आकर्षण में हम रह सकते हैं जो हमारा संबंध तो है नहीं इसलिए हम लोग बार बार फटकते हैं भागते हैं इधर दूर आत्म करते हैं কিন্তু সম্বন্ধ তো হয়নি আপ নিত্যানন্দ কো ছোড় করে জগৎ মে কোই যা সকতা হ্যায় নিত্যানন্দ বড়ে জবরদস্তি করকে বড়ে সমঝা বুঝা করকে উনকো বিদা দিয়া জব জানে লগে বার বার দেখতে হ্যায় বার বার ধাম কো দণ্ডত করতে হ্যায় মূর্ছিত হো জাতে হ্যায় গির পড়তে হ্যায় কিন্তু রোতে হ্যায় নিত্যানন্দ কো তব ভি আদেশ দে যাও সব চল যা বেনারস আয়ে উস সময় উনকি ইচ্ছা হুয়া কি সার্বম পণ্ডিত কে শিক্ষা শিষ্য কোন মধুসূদন বাচস্পতি ও মহাপ্রভু কে সাথ যে বেদান্ত কি ব্যাখ্যা কিয়া সর্বম পণ্ডিত জি নে ও বেদান্ত কি ব্যাখ্যা মহাপ্রভু জি যে পাল্টা কিয়া তো মধুসূদন বাচস্পতি নে শুনা উনসে বেদান্ত শিখনে কে লিয়ে হ্যাঁ উহাঁ পর রহে গে আর যে মহিনাও রহনে লগে সংস্কৃত শিখ রা বেদান্ত সূত্র শুন রে শুনতে শুনতে জীব গোস্বামী প্রভু ও শিষ্য হোনে পর ভি বৈষ্ণব নেই বনেছে মহাপ্রভু বেদান্ত জাননে পর ভি उन्होंने वहां पर बह करके उनकी चित्तवृत्ति को बदल दिया और बदल करके वृंदावन में ले आए सर्वम मधुसूदन विद्यावाचस्पति को उन्होंने इसके बाद में ग्रंथ लिखा बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा नाम तो भूल गया राधारानी के गोपियों के ऊपर में आकर के सब बदल करके भाव अब वर्णन किया जीव गोस्वामी प्रभु जब की फिर ब्रज में प्रवेश किया वो रूप गोस्वामी के आश्रम में रहने लगे रूप गोस्वामी प्रभु समस्त प्रकार के ग्रंथावली प्रकाश करते उनके पास में हैं उनको देखने के लिए विस्तार और उसको एक के बाद एक संकलन करके सबको सामंजस्य पूर्वक अर्थात प्रकाश करने के लिए उनके पास छोड़ देते अब जीव गोस्वामी प्रभु निरंतर उनकी सेवा में रहे आज क्या हुआ हम लोगों ने सुना बल्लभ भट्ट मथुरा से करीब करीब चले जाते हमारे रूप गोस्वामी के निकट शास्त्र आलोचना करते, रुग्वसन रुग मथुरा चले आते, मथुरा आकर के उन्होंने एक महीना मथुरा वास किया, उससे मथुरा महात्मा उन्होंने प्रकाश किया। बहुत श्लोक उसमें बहुत सुंदर सुंदर जुमना देवी क्या अष्टक लिखा, यहाँ पर मथुरा अष्टक लिखा, बहुत कुछ लिखा प्रकाश किया। बल्लभ भट्ट बल्लभाचार्य के साथ रुग्वसन का बहुत ही प्रीति। एक दिन बल्लभाचार्य चलते करके वृंदावन पहुंचे, जहाँ सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर में वहाँ पर रुग्वसन प्रभु भजन कुटी में भजन करते थे, प्रतिदिन ग्रंथ लिखते थे। उस समय रुग्वसन प्रभु लिख रहे थे मुक्ति मुक्ति प्रिया जावत रिधि वर्तते, भक्ति मुक्ति प्रिया पिछा की जावत रिधि वर्तते तावत भक्ति कथम क्षेत्र सुखम अबुद्ध भवित। भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा ये पिशाचिनी के समान है, यदि किसी को पकड़ लिया तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाता है, कभी भी सुख उनके हृदय में नहीं आ सकता, सुखी नहीं बन सकता। तो लिख रहे थे और इतने बल्लभ आया, देखा क्या लिख रहे हैं, तो भक्त संत सिंधु। अच्छा तो देखो क्या मुख्य बंदा देखा, अरे आपने क्या लिखा, इसके बदले में कोई शब्द और कुछ यदि आप दे देते तो बड़ा अच्छा होता। तो बोला अच्छा आप ये ले जाइए और ले जा करके आप इसको बदल करके कोई यदि उपयुक्त शब्द हो इसके बदले में दे दीजिए। वो पन्ना को लेके रुग्वसन प्रभु से बहुत तरह तरह की बातें हुई, सुंदर सुंदर शास्त्र आलोचना, क्यों मत इच्छा मदगत प्रणा बुधंत परस्परम कथंत मांग निष्ठम तुष्यंती च रमंती च। जब संत लोग मिलते हैं संसार की बहू बेटी और नाती पोता खाना पीना कपड़ा लत्ते की बात करते थे नहीं, मत चित्त मत गतर बनना बुधंत परस्परम, वो लोग क्या बात करते, कथंत मांग निष्ठम मेरे बारे में, भगवान कहते मेरे बारे में बातचीत करते, कैसे हम प्रजन राज्य में प्रवेश करें, कैसे हमारा अनुभव क्या अनुसरण कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते, विभिन्न प्रकार बातें। बल्लभाचार्य ने अपने अनुभव की बातें, अपना प्रीति की बात, सेवा की रीति, भजन की रीति, उन्होंने वर्णन की, रुग्वसन प्रभु दीन न किंचन करके सब कुछ सुन लेते और कुछ मुझसे तो क्या आप लोग कृपा शक्ति कार्य करेंगे, आप लोग भक्त प्रतिभाशी विभिन्न प्रकार सम्मान देके उनको विदाय दिया। किंतु जीव गोस्वाई प्रभु बैठे थे वहां, उनके हृदय में बड़ा तर्पण हो गया, अच्छा हमारे गुरु जी स्वयं भगवान के रूप के प्रकाश हैं, और जहाँ पर कृष्ण स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, राधा रानी के स्वयं रूप प्रकाशित प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और वहां पर ये कह रहे हैं कि इसको बदल देगा अर्थात अंधकार से ढक देगा, बादल रूपी मुझे अभिमान को लाकर के शब्द को विन्यास को पलट देगा, अच्छा चलो। और वो सैंपल को प्रणाम किया, प्रणाम कर बोले मैं थोड़ा स्नान करके शाम को पानी लेके आत्मन अमृत करके अभी आता हूँ, क्या करे खड़ा ले ली और लेकर पानी भरने चल, कहते मिले कहाँ कैसे इनसे बात करूंगा, मन में तो उत्कंठा। किंतु साधुओं का और पढ़े लिखे व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, भांगी चमार की तरह तू मैं नहीं करता, कुत्ता की तरह काव 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 नहीं करती, बार बार में लड़ते और भिड़ते नहीं है, दादागिरी और नानागिरी नहीं करती। शिव गोस्वा प्रभु आराम से गए, जाकर के कहाँ गए, वो जमुना किनारे पानी भर रहे हैं और जमुना जी के महिमा स्तुति कर रहे हैं, सुंदर सुंदर स्तुतियां पाठ करने लगे, और क्या संतों की महिमा, संत कौन होते हैं, संत दर्शन कैसे होता है, संतों की महिमा कीर्तन करने लगे। आंख वाला व्यक्ति संतों को देख सकता है कि या बिना आंख का आदमी देखता है, संतों की कृपा से किसी के ऊपर प्रतिबिंबित होता है, उन्हीं की कृपा शक्ति से संतों का देखने की क्षमता होता है, नहीं तो यदि कोई कहे मैं संत देख लूंगा तो संतों को देखने के लिए आया तो क्या देखेगा, जैसे उदाहरण दिया हमारे महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित जी को भेज दिया कहाँ, हमारे उनको पुंडरीक विद्यानंद प्रभु को देखने के लिए आया तो बोला देखा, अरे देखते हो तेरा मन उल्लास से भर जाता, बड़े सुंदर प्रसन्न हो जाता, इसका मतलब तुमने देखा नहीं। फिर मुकुंद प्रभु को भेज दिया, मुकुंद जाकर के जैसे अहो बकियम सनकाल कूटम बस बड़े सुंदर गला से गाने गाने लग गए कृष्ण लीला, और वो कहाँ पालंक में बैठ गए पिज्जानी में सोने का पान खा के थूकते, बालों में सुंदर सुगंधित तेल टपक रहे हैं, फैनिल सज्जा लुढ़क गए जमीन में, एक कृष्ण के गुण सुनते ऐसे दयालु कृष्ण है जो पुतना मारने आई जहर देके उसके हृदय को बदल करके मां मातृ की गति चली बड़े वो सब और मुकुंद गाने लग गए मुख से फेन निकलने लग गए लाला निकलने लगे और कहां गया उनका पिज्ञानी कहां गया सुंदर फेने सज्जा कहां गया उनका सवारे हुए बाल केस ऐसे छटपटाने लग गए भाव असत्विक भाव विचार होने लग गया तब उनके कृपा से तब वैष्णव दर्शन किया फिर आकर बोले मैं तो महा अपराध किया वैष्णव चरणों में तब महाप्रभु क्या कहा जाओ मंत्र दीक्षा ग्रहण करो गुरु बनाओ उनको एक बार प्रद्युम्न मिश्र को भेजा राय रामानंद के निकट महाप्रभु जाओ हरि कथा सुन रहे तो वहां जाओ वो जाकर क्या देखा अरे बाप रे बाप ये कैसा आदमी है हैं युवती लड़कियां 15-16 साल की उनको स्नान करा रहा है और मलमल के साबुन से धो रहा है सारा अंगों को इसके बाद चंदन और आवाडा सारा शरीर में मल रहे हैं कपड़ा पहनाते हैं गुप्त अंग सब दर्शन करते हैं कैसा आदमी है हैं इनसे हरि कथा सुनूंगा महाप्रभु के विचार महाप्रभु औरतों का नाम नहीं सुनते दर्शन नहीं करते बोलते हैं कि यदि संत साधु संत होकर यदि स्त्री लकड़ी की मूर्ति हो उसको भी छू मत देखो मत तुम्हारा विचार हो जाएगा और वो लड़कियों के ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं सजा रहे हैं स्नान करा रहे हैं गुप्त अंग दर्शन स्वस्थ करते हैं उनको विचार नहीं होता इससे हरि कथा सुनूंगा मैं भागे आए तो महाप्रभु ने क्या कहा दर्शन हुआ कथा सुना चुप रहे क्यों अरे हरि दर्शन साधु दर्शन हरि कथा सुनने से इधर निर्मल पवित्र होता है तुमने साधु के पास जाकर के उनके जो पाप ताप मल्यता कपटता दुष्टता या पूर्व पूर्व संस्कार के जो कुछ था तुमने सब कुछ ग्रहण करके ले आया और उनके पास से अच्छा अनमोल रत्न तो ले ही नहीं ले पाए उनके संदर्भ में पेटी में सब भरा पड़ा हुआ है तुम कैसे देखोगे साधु को दिखाने वाला भी चाहिए ये आंख में ताकत कहाँ है हृदय में बल कहाँ है चित बल नहीं शक्ति नहीं दिखती शक्ति नहीं कैसे देखेगा तो बलवान व्यक्ति को भेजा जब बलवान व्यक्ति को भेजा उनके कृपा से तब वो दर्शन हुआ साधु दर्शन प्रभु सुंदर सुंदर श्लोकों के साथ वैष्णव दर्शन की महिमा भक्त दर्शन की महिमा साधु दर्शन की महिमा दाम दर्शन की महिमा यमुना दर्शन की महिमा कीर्तन करने लगे और वो संस्कृत के बड़ा पारंगत विद्वान सुने सुनकर भी बोली बालक तो छोटा मोटा था ऐसे बालक नहीं बालक तो बड़ा तेज है बुलाया ए तुम कौन हो तो संस्कृत में पूछा तो हम कृष्णदास हम हमने कृष्णदास हम मैं कृष्ण अरे तुम्हारा पूर्वाश्रम कहाँ है तुम्हारा माता पिता कौन है नारी आप इतना बड़ा दिग्गज पंडित और विद्वान ब्राह्मण और दिग्ग गुरु आचार्य आप ऐसे पूछते हैं साधुओं को आप जानते नहीं कितने जन्म का माता पिता की बात कहूं जन्मे जन्मे सब माता पिता सब पाए कृष्ण गुरु ना ही मिले भजो ही आए जितना जन्म लिया इतना तो माँ बाप हुए तो कौन से माँ बाप की कहूं और परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान का कहूं कि भविष्य अतीत क्या कहूं क्या कहूं है हमारे सबके माता पिता तो भगवान है आप इतना दिग्गज पंडित और आचार्य आप जानते नहीं आप मुझे पूछते हैं फिर ये उनसे पूछने लग गए अच्छा तुम्हारा गुरु कौन है तो उन्होंने बताया जगत गुरु एकमात्र कृष्ण और कृष्ण जहां पर जिनके हृदय में प्रकाशित होते हैं वही गुरु पद बच्चे हैं और जिनके हृदय में कृष्ण प्रतिबिंबित नहीं होते हैं प्रकाशित नहीं होते हैं तो गुरु पद बच्चे नहीं है लोग हुए जिनके हृदय में अन्याभिलाष है कर्म और तो काम मुक्ति की वासना है भोग की वृत्ति है मुक्ति की इच्छा है वो अभी भी गुरु पद बच्चे नहीं है तब उन्होंने व्याख्या किया क्या साधु कौन है कौन ठग है कौन जाली है डायरेक्ट नहीं कहा क्या कहा धर्मो प्रजित गई वस्त्र परमो निर्म शरणम सतम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापोत्र अनुमानम शिव भागवते मामुनि कृते किंबा परिश्चर सद्य रिद्ध वरुद्रते कितिमि सुसुवि तत्कनात् पृथ्वी से धर्म नामे जत कथा चले भागवत कहता परिपूर्ण छले सब ठगबाज है छलबाज है लोग ईर्ष्या करते हिंसा करते जो धर्म और काम मुख की बात करते हैं ऐसी व्यक्ति शुद्ध नहीं है वो मत्सरता युक्त है ठगते हैं लोगों को अरे मनुष्य जन्म दुर्लभ निर्दम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयान कुनेन वनवस्थतेरितं पुमान भगवद्भिन्न तरे स्वात्मा। वो व्यक्ति आत्मघात ही जो ये आदि मनुष्य से लाभ करके है लोगों ठगा, धर्म की तरफ लगा दिया, अर्थ की तरफ लगा दिया है, काम और मोक्ष की तरफ लगा दिया, ठगबाज है। जैसे कोई व्यक्ति आया, बाबा मेरा बेटा नहीं, आप साधु सिद्ध है, मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बेटा हो जाए, ठगबाज नहीं है। एक बेटा देने का मतलब उनको धक्का लगाकर संसार में गिरा दिया। अब तुम कहां बेटा दिया नहीं, कृष्ण को वो अपना मानेगा, उनको ममता को कृष्ण के चरण में न लगा पाया, साधु नहीं ठगबाज है, धोखाबाज, साधु का बेच पाना क्या होता है, तूने को धोखा देकर धक्का देकर फेंक दिया कारागार में। एक बार तुम बड़े मुश्किल से उठा, भगवान ने धन नहीं दी, बाबा धन दे दो, आप सिद्ध महात्मा धन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, धन धान्य मिल जाए, बड़े ठगी छली। अरे बेचारे को धन नहीं था, कभी तो कृष्ण भजन करते और धन दे दिया, फंस गया उसमें। चुप चुप चार दिन की चांदनी और चार चार चोकर में चौकड़िया पकड़ी चमड़िया चमड़ी में दोबारा फंसा दिया। धर्म दान करो, पुण्य करो, समाज सेवा का रास्ता बना, बावड़ी बना, तालाब बना, खोदो, दवाई बांटो,